ओम शांति। कल हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी थी, व्यर्थ और समर्थ संकल्पों पर। उसमें एक बहुत पावरफुल पॉइंट थी, जो समर्थ आत्मा है, जो सदा काल की समर्थ आत्माएं हैं, वही लंबे काल तक राज करेंगी। क्योंकि राज करना, इसके लिए राजा को शक्तियां चाहिए बहुत। कमजोर व्यक्ति को यदि राजा की गद्दी पर बैठा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? राजा बैठे हैं ना, है? प्रजा उस पर राज कर देगी। और बोलो, राजा है कोई आप में से, है? सब बिगड़ जाएगा। और है राज कोई छीन लेगा। बहने बताएंगे कुछ, किसी कमजोर व्यक्ति को राजा बना दिया जाए तो है? हाँ, कोई भी कर्मचारी मंत्री उसकी बात नहीं मानेंगे, उस पर राज करने लगेंगे। इसलिए जिन्हें लंबा काल तक राज करना है, उन्हें शक्तिशाली होना चाहिए। संगम युग की बहुत सारी क्वालिफिकेशन बताई, 8 याद है ना, कल की मुरली। संगम युग पर तुम ये कर सकते हो, याद है ना? तो उन सभी को सामने रखकर हमें अपने से पूछना है कि हम उनमें से कितनी कर रहे हैं। तो पहले हम चर्चा करें व्यर्थ संकल्पों की। किस आत्मा को व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं? आप सभी को हिस्सा लेना है जरा। किसको संकल्प बहुत चलते हैं? चल जल्दी बोलो, सबको चलते हैं। जिसके मन में कोई ना कोई कामना है। आज एक बहुत अच्छे रेडियो पे पहले विचार आया कि इच्छाओं का सागर ऐसा है जो कभी तृप्त नहीं होता, जैसे जैसे इसे पूरा करो लहरें तेज उठती जाती हैं, विवेकानंद ने कहा। तो जिसके पास इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, उन्हें व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। दूसरा कारण बहने बताएंगी, हैं? और बताओ प्रैक्टिकल कारण। सबको चलते हैं व्यर्थ संकल्प, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे नहीं चलते हैं। अपने अपने अनुभव से बताएं। जो दूसरों को देखते हैं, ठीक। और चलो भाई बताएं, बहनों को छोड़ देते हैं। जो मोह के वश रहते हैं, ठीक बात। और बोलो, संग दोष के कारण, बहुत अच्छा। जो दूसरों की कमियों को देखते हैं और जिनको भविष्य की चिंता रहती है, जिनमें कोई ना कोई डर रहता है, कोई भी मनोविकार होगा तो व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे। और जो पास्ट का चिंतन करते रहते हैं, जो पास्ट को बहुत देखते हैं, ये हो गया ये हो गया, और जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, नाजुक। सेंसिटिव, देखा, हाथ लगाया छुई मुई मुरझा गई, जरा सा किसी ने कुछ बोला और मुरझा गए। तो जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, जो बहुत सेंसिटिव हैं, उनको व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। हम सब एक शब्द यूज करते हैं इसके लिए, जिनको फीलिंग बहुत आती है, उन्हें व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। जो मान अपमान को सहन नहीं कर सकते, जो सर्दी गर्मी को सहन नहीं कर पाते, जो निंदा सुन नहीं सकते, उनको बहुत संकल्प चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प चलना, ये कमजोर आत्मा की निशानी या शक्तिशाली की? कमजोर आत्मा की निशानी। प्रश्न तो ये पूछने की जरूरत नहीं है। पर प्रश्न मुझे ये पूछना है कि व्यर्थ संकल्प आत्मा को कमजोर करते हैं क्यों? अगर हम आत्माओं की शुरू से अब तक की कहानी को देखें, हम सब की कहानी, सतयुग त्रेता में व्यर्थ संकल्प नहीं था, अच्छे संकल्प थे, फिर भी हमारी शक्तियां यूज हो गई, हम नीचे उतरे। द्वापर युग के बाद विकार आए, विकर्म आए, तो संकल्प की गति तेज हो गई। तो जब तेज गति हो जाए तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा ना, होगा, तो आत्मा की शक्तियां तेजी से खर्च हुई। एक बात और हम सब जानते हैं, बाबा ने बहुत बार कही है कि जहां व्यर्थ है उसका विस्तार बहुत है, समर्थ का विस्तार नहीं होता। छोटा सा उदाहरण, सत्य का विस्तार नहीं होता, झूठ का विस्तार होता है। दो और दो चार, बच्चे भी जानते हैं, इसके विस्तार की जरूरत नहीं कि क्यों होते हैं चार। या कोई पूछेगा दो और दो चार क्यों होते हैं, सत्य है, इसके विस्तार की जरूरत नहीं। लेकिन यदि कोई कह दे दो और दो पांच, तो उस बात को सिद्ध करने के लिए कि पांच नहीं होते, शायद कई फार्मूले यूज करने पड़े कि दो और दो सत्य ही होते हैं, चार ही होते हैं। तो जहां असत्य है, जहां व्यर्थ है, उसका विस्तार बहुत है, और विस्तार की स्पीड बहुत है, व्यर्थ की स्पीड बहुत है। जब किसी के मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो स्पीड तेज हो जाती है, इसलिए मन की शक्तियां तेजी से नष्ट होती हैं। और जब आत्मा स्वमान में स्थित होती है, उसकी संकल्प कम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, तो मन की स्पीड बहुत कम होती है। हमारी मन की स्पीड यदि कम है, यदि हमारे मन में बहुत संकल्प चल रहे हैं, तो हम कम शक्तिशाली हैं। और यदि हम अपने मन के संकल्पों की गति को धीमा करना जानते हैं, तो संकल्प भी कम होंगे और हम अधिक शक्तिशाली होंगे। इसलिए हमें ये स्लोगन याद रखना है, जिसके कम संकल्प वो उतना ही अधिक शक्तिशाली, जिस मन में ज्यादा संकल्प वो आत्मा उतनी ही कम शक्तिशाली यानी कमजोर। आत्मा के ये व्यर्थ संकल्प हमारे उल्टे अनुभवों को सहज कराते हैं। अच्छे अनुभव करने के लिए मनुष्य को इंतजार करनी पड़ती है, प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे। लेकिन यदि कोई दुख का संकल्प आ गया तो दुख तुरंत महसूस होने लगेगा। माँ को बच्चे की याद आ गई मधुबन में बैठे बैठे, तो आंसू आ जाएंगे। दूसरी पूछेगी क्या हुआ है, किसने कुछ कहा है? कि नहीं, ऐसे ही बस याद आ गई किसी की। तुरंत अनुभव होता है व्यर्थ के प्रभाव का, होता है ना। और भी प्रश्न पूछा है किसी ने डर की बात, डर एक संकल्प के कारण ही है ना, केवल संकल्प मनुष्य को भयभीत कर रहा है, अंधेरा है, चोर ना आ जाए, डर। जबकि चोर चाहे 100-100 किलोमीटर भी ना हो वहां, लेकिन एक संकल्प है कि चोर ना आ जाए, तो डर है, अंधेरा है, अकेले हैं, भूत ना आ जाए, और ज्यादा डर। भूत चाहे आपसे डरते हो, लेकिन ये संकल्प डराता रहेगा। तो हम सभी व्यर्थ संकल्पों के बुरे प्रभाव को जानते हैं, इसलिए जिसे भी अपने इस जीवन में उन्नति करनी है, पहला परिवर्तन करना चाहिए कौन सा? व्यर्थ को समर्थ, ये तो थोड़ा मेहनत का काम है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल, जो हमारे उल्टे संकल्प चल रहे हैं उनको ठीक करना, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अपने रोज के जीवन में। जो चिंता के संकल्प चलते हैं, जो भय के चलते हैं, जो परेशानियों के चलते हैं, जो मन को उदास करने वाले चलते हैं, उन सभी को पॉजिटिव करें पहले। पता नहीं क्या होगा, एग्जाम दे आए, बहुत कुमार बैठे हैं स्टूडेंट, एग्जाम दे आए, कोई एक पेपर थोड़ा सा खराब हो गया है, अब डर हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो क्या होगा? ये संकल्प क्या करेगा बोलो? तो व्यर्थ संकल्प क्या करेगा? देखो, सूक्ष्म गति है, बात हंसी की भी है लेकिन बिल्कुल रियल है। स्टूडेंट का संकल्प चल रहा है, पेपर थोड़ा सा खराब हुआ, पता नहीं क्या होगा, तो जो एग्जामिनर होगा ना, मार्क्स देने वाला, वो नींद से उठ के आके नंबर देगा, कुछ के कुछ, पूरा भी नहीं पढ़ेगा, देखेगा भी नहीं, पर कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, चलो। देखो, आजकल नंबर देना एग्जामिनर्स के मूड पर बहुत निर्भर करता है, स्टूडेंट की होशियारी पे नहीं, एग्जामिनर के मूड पर। घर से लड़के आया हो तो जिनके भी कॉपी चेक करेगा, सबका भाग्य दुर्भाग्य में बदल देगा। हमारे संकल्प उसे ठीक कर सकते हैं, हमारे निगेटिव संकल्प परिस्थितियों को बढ़ाते हैं। हमें ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, परिस्थितियों को बढ़ाते हैं हमारे कमजोर संकल्प, निगेटिव संकल्प। और उसी जगह यदि हम अच्छे संकल्प करें, शक्तिशाली संकल्प करें, तो बिगड़ी हुई परिस्थितियों को ठीक करेंगे। इसका सबको प्रयोग करना है जीवन में, रोज छोटी बातों में इसका प्रयोग करके देखें। देखिए, कोई व्यक्ति थोड़ा सा बीमार है, रात को सो रहा है, सोते हुए क्या संकल्प करेगा अगले दिन के लिए, सवेरे के लिए? करते हैं सभी, क्या करेगा कि आज तो बोलो, लज्जा की बात नहीं, आज तो तबीयत थोड़ी सी ढीली है, इसलिए सवेरे आज तो उठा नहीं जाएगा। पहले से ही फाइनल कर दिया अपने लिए कि आज उठा नहीं जाएगा, सिर दर्द है थोड़ा सा। बाबा को भी तो पता है ना, इनको सिर दर्द है, छुट्टी दे देगा, डॉक्टर भी छुट्टी दे देते हैं ना, रेस्ट कर लो भाई, काम पे नहीं जाना आज, तो बाबा को भी तो पता है आज छुट्टी। पहले ही कमजोर संकल्प कर देते हैं तो नींद ही आएगी सवेरे। शक्तिशाली संकल्प कर दें कि हमारा सिर दर्द सोते ठीक हो जाएगा और सवेरे उठकर हम बाबा से मिलन का सुख प्राप्त करेंगे, तो वैसा ही हो जाएगा। संकल्प हमारे क्या क्रिएट करते हैं, इसके अनुभव करके देखें, रोज की अपनी दिनचर्या में, छोटी बातों में। आप अपनी सेवा पर देर से जा रहे हैं, पहले ही संकल्प कर रहे हैं, आज तो जो भाई है ना डांटेगा, तो जरूर वो डांटेगा। और आप संकल्प करके जाओ, मैं एक महान आत्मा हूं, वो कुछ नहीं बोलेगा, तो वैसा ही होगा। ये छोटे प्रयोग हैं जो आप सभी के रोज के जीवन में यदि आप करेंगे तो इस पे विश्वास बढ़ेगा, अपनी संकल्प शक्ति के महत्व का पूरा आभास हो जाएगा, और तब पता चलेगा। बाबा हमेशा कहते हैं, संकल्प का खजाना, संकल्प की शक्ति सबसे बड़े हैं। देखिए, दो चीज हैं, संकल्प का खजाना और संकल्प की शक्ति। संकल्प सचमुच खजाना है ना, एक संकल्प आत्मा को खुश कर देता है, खजाना हो गया ना, वो लाखों रुपए मिलने पे भी जो खुशी ना हो, वो खुशी एक संकल्प से प्राप्त हो जाती है, तो खजाना हो गया ना। एक अच्छा संकल्प मनुष्य के उमंग उत्साह को बढ़ा देता है, तो खजाना हो गया। एक कमजोर संकल्प उसे निराश कर देता है, एक बहुत अच्छा संकल्प सफल बना देता है, तो खजाना हो गया। तो हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है, ये हमें महसूस होना चाहिए, उस खजाने की हमें खुशी रहेगी, और ये बहुत बड़ी शक्ति भी है, इसके छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। आज बाबा ने बता दिया, समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा करना है तो क्या करो, कल बता दिया था, ज्ञान की एक एक पॉइंट का मनन करो, तीन स्थिति सुनना, समाना, स्वरूप बनना। सुनना भी बहुत अच्छा है, बिना सुने तो आगे नहीं चलेंगे। फिर उन चीजों को समा लेना, माना धारण कर लेना, बुद्धि उनको स्वीकार कर ले, वो बुद्धि में आ गई हो बहुत अच्छी तरह। जब बुद्धि में वो समाई जाएंगी, तो जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे जीवन में, तो जीवन उसका स्वरूप बन जाएगा। तीनों का ही महत्व है, तीनों स्टेप वाइज है। पहले हम सुनेंगे, फिर अंदर धारण हो जाएंगी बुद्धि में, फिर उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। इसका अभ्यास हमें बहुत अच्छा कर लेना चाहिए। समर्थ संकल्पों का सुख बहुत बड़ा है। जैसे आप सभी ने ये चिंतन किया, व्यर्थ संकल्प किन्हें चलते हैं, वैसे ये भी चिंतन बहुत आवश्यक है, समर्थ संकल्प किनके पास आते हैं। बोलो, कौन समर्थ संकल्पों का सुख ले सकते हैं? और बोलो, पहली बात, जो अंतर्मुखी रहते हों। अंतर्मुखता हमें अनेक चीजों से बचाती है ना, जिनको व्यर्थ में कोई रस ना हो, जो एकांत प्रिय हो, एकांत में ही अच्छे संकल्पों का रस प्राप्त होता है, जिनका मुरली से बहुत प्यार हो, जो मुरली का सुख प्राप्त करते हो, जो उसके महत्व को समझते हो, क्योंकि ये संकल्पों का सारा खजाना मुरली से मिलता है ना, बाबा ने भी कहा। तो मुरली में रस लेना, एकांत में उसका मनन करना, लिखना, इस सब से धीरे धीरे हमारे संकल्प शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना है, जिसके संकल्प शक्तिशाली, वो आत्मा शक्तिशाली, और जो शक्तिशाली आत्मा, वो लंबा काल तक राज अधिकारी, द्वापर युग के बाद भी वो राज अधिकारी बनेंगे। बाबा ने बात बता दी है, द्वापर फिर कलयुग में भी ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को राज प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है, राज करने के योग्य रहेंगे। अब ये कुछ प्रश्न जो आए हैं, इसमें से एक पहला भय का, किसी किसी को बहुत डर होता है। सबसे बड़ा डर कौन सा है मनुष्य के जीवन में? मृत्यु का डर। तो यदि किसी की मृत्यु पानी से हुई है, तो उसको पानी से डर, जलने से हुई है, जलने से डर, मृत्यु के समय बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, तो बिना कारण ही भय, उसे पता नहीं चलेगा वो क्यों भयभीत है। किसी ने किसी जीवन में आत्मा को बहुत सताया है, भय लगेगा मनुष्यों से। किसी ने पाप कर्म बहुत किए हैं, जन्म जन्म पाप कर्म भयभीत करेंगे। विकारों ने किसी को बहुत कमजोर कर दिया है, उसको बहुत डर लगेगा। किसी को भूत प्रेत ने सताया हो किसी जन्म में, वो भी बहुत भयभीत रहेंगे। इन सभी भय से मुक्ति का तरीका है, सबसे पहला सिंपल, बाबा को साथी बनाना। पहला तरीका सिंपल है, हम सब जानते हैं। और बाबा को साथी कैसे बनाया जाता है? बोलो, कैसे बनाया जाता है? बहुतों की समझ में नहीं आता, बाबा को साथी कैसे बनाएं? बड़ा मुश्किल काम। बोलो, सहज कर दो इसको। ये नशा हो जाए कि बाबा हमारा साथी है, इतना ही बहुत है बस। लौकिक में आप देखो, किसी का कोई संबंधी बड़ा व्यक्ति हो, दुनिया में बड़ी पोस्ट पर हो, वो चाहे साथ न रहता हो, उसका नशा कि हमारा संबंधी फलाना है, कितनी मदद करेगा, वो साथ नहीं रहता। ये नशा कि बाबा हमारे साथ है, हमें उसके साथ का अनुभव कराएगा, और हमें निश्चय होता जाए कि जहां बाबा का साथ है, आज शायद मुरली में था, वहां प्रकृति भी आज था ना, वो वरदान में प्रकृति दासी रहेगी, औरों को कष्ट पहुंचाएगी, अपने मालिकों की सेवा करेगी, आज्ञा मानेगी। तो हमें ये विश्वास हो जाए कि जहाँ बाबा का साथ है, वहाँ विजय है, वहाँ हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। अशरीरी होने का हम बार बार अभ्यास करेंगे, तो ये मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, और प्रकृति के हम मालिक हैं, ये स्वमान। तो किसी भी प्रकृति के प्रकोप के कारण कष्ट हुआ हो किसी जन्म में, उससे आत्मा छूट जाएगी और ये भय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस सब के साथ अंदर छुपे हुए भय को नष्ट करने के लिए ज्ञान की शक्ति ही बहुत बड़ा शस्त्र है। इसलिए ज्ञान के पॉइंट्स हमेशा, हम सब स्टूडेंट्स हैं, ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने पास अलग से नोट करने चाहिए। जैसे कल की मुरली में ये समर्थ वाली पॉइंट थी ना, जो लंबा काल की समर्थ आत्माएं हैं वो लंबा काल के राज अधिकारी हैं। तो ये ऐसी पॉइंट है जो हमें बहुत बल देती है। ऐसे व्यर्थ के बारे में बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं, ऐसी पॉइंट अलग से, एक तो हम रोज मुरली नोट करते हैं, दूसरी बात है ऐसी शक्तिशाली पॉइंट हमें अलग से नोट करके उनकी स्टडी करते रहना चाहिए, तो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। और अगला अभ्यास है इसके लिए स्वमान। स्वमान के अभ्यास से आत्मा से भय नष्ट हो जाता है, उसमें भी मैं शिव शक्ति हूं। अकाल, बाबा कहते हैं ना, मास्टर महाकाल, मास्टर महाकाल सबसे पावरफुल। महाकाल कैसे डरेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान, प्रकृति के मालिक। और जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की हो वो आत्माएं संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, उन्हें डर की जरूरत नहीं। जो पवित्र हैं उन्हें किसी से डर नहीं, सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता की है। जहां पवित्रता का बल है वहां भूत प्रेत पास नहीं आते, आएंगे ही नहीं, दूर से ही नमस्कार करके चले जाएंगे। भूत डरेंगे, कहेंगे ये महाभूत है कोई, इसलिए भूतों से डरने की जरूरत नहीं। वास्तव में जो भूतों से डरते हैं, जिनके संकल्प कमजोर होते हैं, उन पे इनका वार ज्यादा होता है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, पहले भी मैंने यहाँ क्लास में सुनाया है। एक बहुत अच्छा पत्रकार है भारत का, वो उसको एक बार एक चांस मिला, अघोरी होते है ना, अघोरी कहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपनी, ये इधर विंध्याचल पर्वत है ना, उसके उस तरफ जहाँ कोई आदमी न जा सके, वो 200-250 अघोरी इकट्ठे हुए सारे भारत के। तो इसने रिक्वेस्ट की किसी से, कोई इसका गुरु था, कि मुझे अघोरियों की कॉन्फ्रेंस देखनी है। इसको बहुत मना किया कि भाई ये अघोरी तो एक तो आधे बुद्धू, अहंकारी, क्रोधी और ये गंदी विद्याएं करने वाले, शमशान में तंत्र मंत्र सीखने वाले ऐसे होते हैं, उनके पास जाने से कोई फायदा नहीं, कभी तुम मारे जाओ। इन्हें कहा नहीं मैं जाऊंगा, ये कोई योग आदि अभ्यास करता था, उससे विश्वास था कि मुझे कुछ होगा नहीं। तो उसके गुरु ने उसको वहां तक पहुंचा दिया। तो पहला एक ही अनुभव में उसका सुनाता हूं, उसने अपने सारे अनुभव लिखे। उसके अनुभव पढ़ के मुझे लगा कि बाबा ने जो राजयोग हमें सिखाया है उस शक्ति के सामने संसार की और कोई शक्ति ठहरती नहीं। तंत्र मंत्र, घोर विद्या, जितने भी वाम पंथ हैं, किसी की भी शक्ति काम नहीं कर सकती। लेकिन राजयोगियों को अपनी शक्ति का मालूम हो, उसका नशा हो, तो वो अनुभव में सुनाऊं। तो जब वो वहां पहुंचा तो एक शिष्य था, कोई यंग होते हैं छोटे छोटे कुछ सीखा हुआ, कहा अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाया, हाथ पे फूंक मारी, मंत्र पढ़ा, कहा दीवार को लगाओ, हाथ दीवार को लगाया तो हाथ चिपक गया। अब इसका हाथ तो हटे ही नहीं, ये परेशान। फिर उसका गुरु आया, गए उसको डांटा अपने शिष्य को कि ये हमारा मेहमान है, इसको तुम तंग क्यों कर रहे हो, छुड़ा दिया। अब ये वहां 3-4 दिन रहा, इसने बड़े भयंकर काम कर दिए वहां, भयंकर जिसे कहते हैं ना, कई तांत्रिकों को, अघोरियों को अपनी ओर मिला लिया, दो ने तो सुसाइड कर लिया। उनको लगा कि हमारा जीवन बेकार है, हम पापी हैं, हम अत्याचारी हैं, हम अपनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम मानवता के शत्रु हैं। वहीं दो ने सुसाइड किया जो उनके बड़े थे, एक की आयु 200 साल थी, जो रिन्यू करता था अपने शरीर को। तो इसको फिर एक साथी जो इसका था, जो वहां संभाल रहा था, उसने कहा तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, सब तुम्हारे विरोधी हो गए हैं और मार देंगे तुम्हें। तो इसने जाने की तैयारी कर ली और उसको कहा कि वो जो पहले दिन मुझे चमत्कार दिखाया था ना, वो मैं फिर देखना चाहता हूं आज। तो बुलाया उसी लड़के को, फूंक मारो मारी, चिपकाओ दीवार से हाथ, चिपकाया, इसने हटा लिया, फिर दोबारा, फिर चिपकाया, फिर हटा लिया, 10 बार हटा लिया, वो परेशान भागा भागा अपने गुरु को बुला के लाया। गुरु ने कहा अच्छा लाओ मैं करता हूं, उसने वही किया हाथ चिपकाओ, फिर उसने हटा लिया, 10 बार उसने भी किया हाथ चिपकाई नहीं। इसने अपने अनुभव में लिखा कि मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं इनसे शक्तिशाली हूं, मेरा हाथ चिपकेगा ही नहीं। हम सबको समझने की बात है, संकल्प में बहुत बड़ी पावर है। समझ गए ना क्या कहने का मतलब है मेरा? हम डरे नहीं भूत प्रेतों से, भूत प्रेत हमसे डरते हैं। हमें पता होना चाहिए जो पवित्र आत्माएं हैं, जो योग कर रहे हैं, उनके चारों ओर प्रभा मंडल होता है और वो भूतों को दिखाई देता है, क्योंकि वो अशरीरी है ना। प्रश्न पूछा है कि इनमें क्या पावर होती है भूतों में, क्योंकि वो देह से नहीं आ रहे हैं, अशरीरी हैं, इसलिए पावर है, इविल पावर, बुरी पावर, निगेटिव पावर। हम जब अशरीरी होते हैं हमारी पावर ईश्वरीय पावर, पॉजिटिव पावर, पवित्रता की शक्ति। तो हम वो जब हमारे इस प्रभा मंडल को देखते हैं तो हमसे बहुत डरते हैं, लेकिन यदि हम डरते हैं तो हमारे कमजोर संकल्प उन्हें आकर्षित कर लेते हैं कि ये काम का शिकार है, चलो शांति मिलेगी बहुत इनके पास जाके, इसलिए आ जाते हैं। बहुत जगह आए हैं शांति के लिए, हमें तो सुनने को मिलता है किसी में प्रवेश कर लिया रोज मुरली सुनने के लिए, क्यों कि भाई एक दिन सुन ली थी मुरली, बहुत सुख मिलता है, अब मैं रोज सुनना चाहता हूं। जिसके तन में प्रवेश किया बहन जी वो परेशान, प्रैक्टिकल घटना, सत्य है, कहानी नहीं सुना रहा हूं, सच्ची घटना। तो कुछ आत्माएं शांति के लिए भी आ जाती है, वो कष्ट नहीं देती लेकिन डर जाते हैं उनसे, ये इविल पावर उनके पास होती है, क्योंकि वो बॉडीलेस हैं। स्वमान का अभ्यास कैसे किया जाए ये भी एक प्रश्न पूछा है। स्वमान ले ले आप कोई भी, बताओ कौन सा लेंगे? मैं महावीर हूं ये स्वमान। अब पहले ने एक पर मैं तरीका बताऊं कैसे उसका अभ्यास किया जाए। जो भी स्वमान आप लेते हैं उस पर आप चिंतन करेंगे। चिंतन कैसे करेंगे? सोचें आप कि मुझे महावीर किसने कहा है? किसने कहा? स्वयं भगवान ने। तो सत्य कहा होगा ना, इसका अर्थ है कि मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, विकार माया मेरा कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने मुझे टाइटल दे दिया, तुम महावीर हो, अपनी शक्तियां और वरदान दे दिए हैं, बस इस नशे में आ जाएं फिर तो शक्तियां बढ़ती जाएंगी। मैं प्रकृति का मालिक हूं, ये स्वमान भी बहुत अच्छा है। अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे कि संपूर्ण प्रकृति, शरीर के सहित 5 तत्व, इसके मालिक मैं आत्मा हूं। एक समय था जब ये सब हमारे अधीन थे, हम विकारों के वश होकर कमजोर हुए तो हम इनके अधीन हो गए। अब बाबा ने हमें फिर से शक्ति दी है और वरदान दे दिया है, तुम इस प्रकृति के मालिक हो। तो मैं इस संपूर्ण प्रकृति का, देह का मालिक हूं। इसमें शरीरीपन भी आ गया, इसका नशा हो जाएगा। फिर इसका दिन में 10 बार 15 बार इस संकल्प को अपने अंदर लाएं तो उसका नशा होगा, उससे बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी अंदर और उससे हमें भिन्न भिन्न तरह के अनुभव होंगे। हर स्वमान पर चिंतन करना, उसको अधिक से अधिक बार अभ्यास में लाना, 10 बार 15 बार, शुरू में 25 बार, उससे भी ज्यादा। ज्यादा चिंतन न हो तो रिपीट करें पहले पहले, धीरे धीरे उससे अनुभव होगा। अमृत वेले का प्रश्न पूछा है। अमृत वेला ऐसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु हमें सारे दिन में समर्थ संकल्प करने चाहिए। बाबा की मुरलियों में आपने सुना होगा जो सारा दिन अंतर्मुखी रहते हैं, योग का थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते हैं, उन्हें ही अमृत वेले सब अनुभव होते हैं। जो सारा दिन व्यर्थ में गमाते हैं उनका अमृत वेला सफल नहीं होता, चाहे वो 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, समय व्यतीत होगा केवल, ईश्वरीय मिलन का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो पहला बेस ये रात को भोजन हल्का, अच्छा अभ्यास करके सोना चाहिए, ये नहीं गए और बातचीत करके सो गए। जिस अभ्यास को करके हम रात को सोएंगे सवेरे वही अभ्यास सहज हो जाएगा, सवेरे उठकर फ्रेश हो जाए, मन शांत है सवेरे, उसको हम कुछ थोड़े संकल्प दें। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प दिए जा सकते हैं। मैं पहले भी एक संकल्प सुनाता रहा हूं, बहुत सुंदर, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बाबा वतन से मुझे बुला रहा है कि आओ बच्चे ये सब खजाने तुम्हारे लिए हैं। बाबा वतन से नीचे आ गया है मेरे सामने, अपने सब खजाने और वरदान मुझे दे रहा है। संकल्प करें ताकि मन आनंद खुशी और नशे में आ जाए, फिर बाकी जैसे भी आप योग करेंगे उसका बहुत सुख मिलेगा, स्थिरता अच्छी होगी, एकाग्रता को बढ़ाने का अच्छा अभ्यास भी करना चाहिए। बैठकर यदि नींद आती है तो क्या करना चाहिए, थोड़ा घूम फिर कर, बहुत जगह मधुबन में, छते नीचे बाहर भी, डर की तो अभी कुछ बात नहीं, घूम कर अभ्यास कर लेना चाहिए। ज्यादा नहीं खाना चाहिए रात को, जिसे योग का सुख लेना है भोजन पर पूरा कंट्रोल, पेट भी अच्छा रहे, पेट में गड़बड़ होगी नींद आएगी, थोड़ी चुस्ती से रहना है। जब योग में बैठें तो कुछ अच्छे लक्ष्य लेकर बैठें, एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको पौना घंटा योग में बैठना है तो 10-10 मिनट के लक्ष्य ले ले, 5 के 10 मिनट मुझे अशरीरीपन, 10 मिनट मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास, 10 मिनट बाबा से रूरिहान, 10 मिनट मैं फरिश्ते स्वरूप को धारण करके चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाऊं, 10 मिनट बिंदु रूप का अभ्यास करूं, ऐसे 10-10 मिनट ज्यादा लगे 5-5 मिनट फिर रिपीट कर सकते हैं। तो एक लक्ष्य लेकर योग में बैठें कि मुझे ग्लोब के ऊपर बैठकर 5 मिनट सारी दुनिया को सकास देना है, देखो कितना अच्छा अनुभव होगा। मुझे 5 मिनट के लिए फरिश्ता स्वरूप धारण करके भिन्न भिन्न स्थानों पर जाके वाइब्रेशंस फैलाने हैं, मुझे 5 मिनट के लिए प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे 5 मिनट परम धाम में बीज रूप स्थिति में रहना है, ऐसा बांट ले समय को। ये नहीं कि मुझे तो पौना घंटा ही बीज रूप में बैठना है और 3 मिनट के बाद ही फाइनली बीज रूप में चले जाएं, पता ही न चले पौना घंटा पूरा हो जाए फिर कहें बहुत आनंद आया, टाइम पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। तो ऐसे संकल्प क्रिएट करके एक सुंदर प्लान बनाएंगे स्वयं तो अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। जो भी समर्थ संकल्प मन में उठता हो बहुत अच्छा तरीका है उसे लिख लिया जाए। तो समर्थ संकल्पों का बहुत सुंदर स्टॉक खजाना हमारे पास जमा हो जाएगा जो हमें बहुत सुख प्रदान करेगा। ओम शांति। भट्टी में कौन कौन कुमार जा रहे हैं? सभी जा रहे हैं, ठीक है। पूरा सुख ले आप भट्टी का, केवल सुनेंगे नहीं लेकिन लक्ष्य रखेंगे कि भट्टी से कम कोई एक चीज ऐसी सीख कर जानी है जो पूरा जीवन साथ चले, और कोई एक ऐसी कमजोरी छोड़ देनी है जो जीवन में उन्नति का मार्ग रोक रही हो। ये दो लक्ष्य आप रखेंगे तो भट्टी पूरी सफल हो जाएगी। ओम शांति।